हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 11वां अध्याय श्लोक संख्या 16 और 17। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफला धरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहम् न जाने। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्ये स्तवे वेदे साङ्गपक्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थिततत्कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न वेदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यनन्दा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 11वां अध्याय जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में प्रवेश। तो हम सबने देखा भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के मुख्य द्वार में प्रवेश कर चुके हैं और समस्त द्वारिकावासी भगवान के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तुएं लेकर आए। उसके उपरांत सूत गोस्वामी ने द्वारिका के वैभव के विषय में बताया कि कितना सुंदर द्वारिका स्वयं द्वारिका धाम जो है वो भगवान के स्वागत के लिए खुद को दुल्हन की तरह सजा के बैठा है कि जगह जगह पर साफ सुथरी सड़कें हैं, गलियां हैं, कहीं पर फल फूल उद्यान लगे हुए हैं और सारे घर जो है वो सजे हुए हैं। घर के बाहर भी भगवान के लिए जल से भरे हुए मटके और फल दही अन्य इत्यादि बहुत बहुत वस्तुओं के विषय में बताया कि भगवान के स्वागत के लिए द्वारिकावासियों के साथ साथ द्वारिका भी तत्पर है। और आज बता रहे हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं, किन किन लोग कौन कौन से लोग भगवान की स्वागत के लिए अपने घरों को छोड़कर, मतलब अब यहाँ पर भगवान के मुख्य जो बहुत ज्यादा करीब के लोग हैं ना, उनकी बात हो रही है कि यो समझे भगवान के फैमिली मेंबर्स का इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आज हमें सूत गोस्वामी। अब पहली बार इन सबका वर्णन हुआ है भागवतम में, तो बहुत ही सुंदर तरीके से श्री प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में उनके विषय में बताएंगे कि वो कौन कौन से वास्तव में ये व्यक्ति जो भगवान के इतने निकट हैं, जो भगवान जिनका भगवान के साथ इतना निकट का संबंध है, वो कोई साधारण नहीं है। तो भगवान और भगवान से रिलेटेड व्यक्तियों के विषय में सुनने से हमें शुद्धिकरण होता है, और वो जो शुद्ध सुनना श्रवण भी यदि हम किसी शुद्ध वैष्णव से करते हैं तो क्या होता है, उसका प्रभाव अत्यंत ही तीव्र होता है। जैसे हम जानते हैं कि हम बचपन से जानते थे कि कृष्ण के विषय में, श्री राम के विषय में जानते थे, और सीरीज वगैरह देखते थे जिसमें रामायण की और कृष्णा सीरीज वगैरह, लेकिन उसमें जानते हुए भी गंभीरता से कृष्ण सेवा के लिए तत्पर नहीं थे। यानी कि भगवान को जान लिया था, ज्ञान तो था भगवान के विषय में, भगवान ने ये लीलाएं की, भगवान ने इस तरह से ये जन्म में ये सब पता भले होता है किसी को, लेकिन सरेंडर लेवल तब तक नहीं आता जब तक वो किसी शुद्ध वैष्णव की मुखाविन से ना सुनता है। तो जब पहले भी जब भारत में श्री प्रभुपाद जी थे तब सब लोग जानते थे भगवान के विषय में, सारी स्टोरीज पता थी, सब लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते थे इस बात को, लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने वही ज्ञान जब पाश्चात्य देश में जाकर प्रकट किया और वहां के लोगों को परिवर्तित कर दिया, और जब पुनः ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज के डिवोटीज यहां पर वापस आए, तो फिर उनको देखकर भारतवासियों को लगा अरे ये सब ज्ञान तो हम पहले से जानते थे, इन लोगों को पता चला तो इनका जीवन ही परिवर्तित, क्योंकि इनको किसी साधारण उससे सोर्स से पता नहीं चला, इनको भगवान के भक्त के द्वारा पता चला। तो भगवान का भक्त जब ये शुद्ध वैष्णव जब हमें सुना रहे होते भगवान के विषय में, तो साथ साथ में उनके हृदय की ये इच्छा होती है कि जो सुन रहे हैं उनके हृदय में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, है ना, वो हृदय से भगवान को साथ साथ में प्रार्थना भी कर रहे होते हैं, उनके हृदय में ये इच्छा हो रही होती है कि भगवान के विषय में सुन रहे हैं तो उनके हृदय में भगवान के लिए भक्ति उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो, तो वो जो उनकी इच्छा है, वो जो उनकी प्रार्थना है ना, वो साथ में कार्य कर रही होती है। तो हमारा सौभाग्य है कि हम श्री प्रभुपाद जी के मुखारविंद से आज इन सब महानुभावों के विषय में सुनेंगे। मेरे साथ साथ श्लोक का उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी कहते हैं निशम्य प्रेष्टमायांतम् वासुदेवो महामनः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रम प्रद्युमनश्चारुदेष्णश्च साम्भोजाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगोच्च शीत शयनासन भोजना निशम्य प्रेष्टमायांतम् वासुदेवो महामना अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रमः प्रद्युमनश्चारुदेष्णश्च साम्भोजाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगोच्च शीत शयनासन भोजन निशम्य प्रेष्टमायांतम् वासुदेवो महामना अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रमः प्रद्युमनश्चारुदेष्णश्च साम्भोजां भवति सुतः प्रहर्षवेगोच्छ्रित शयनासन भोजन। शब्दात निशम्य, निशम्य मतलब जैसे ही सोना, क्योंकि अब तो पूरी द्वारिका में एक ही आवाज, द्वारिकाधीश आ गए, द्वारिकाधीश आ गए। तो जैसे ही द्वारिकाधीश के पधारने का समाचार, ऐसा नहीं था कि भगवान हस्तिनापुर से निकल रहे थे फिर मैसेज कर दिया कि भाई मैं आज हस्तिनापुर से निकल रहा हूँ, तीन दिन के बाद पहुंचूंगा या इतने दिन। कोई किसी को भी पता नहीं था पहले द्वारिका में कि भगवान इस दिन आएंगे, किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि इतने समय से भगवान हस्तिनापुर में थे। आज भगवान अचानक से द्वारिका आए हैं, तो हर कोई जो भी सुन रहा है उसके हृदय में एक उल्लास है, एक आनंद है कि हमारे प्राण प्रिय। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि ये लिखा निशम्य प्रेष्ठ मायांतम, ये नहीं लिखा कि कृष्ण का पदार्पण हुआ है या गोविंद आए हैं या फिर ना द्वारिका दिशाएं, कहीं किसी ने ये नहीं कहा है। सूत गोस्वामी कहते हैं निशम्य प्रेष्ठ मायांतम, प्रेष्ठ मायांतम मतलब कि प्रेष्ठ मतलब जिससे बहुत ज्यादा, जो प्राणों से भी अधिक प्रिय है। प्रेष्ठ मायांत मतलब इससे अधिक प्यारा और किसी का कोई नहीं द्वारिका में। जान से प्यारे भगवान, जैसे किसी को अपने प्राण कैसे प्यारे होते हैं, अगर हम कोई हमारे सामने हो और उसको उसकी नाक पकड़ लें, उसके माउथ पर तकिया रख दें और उसको दम घुटने लगेगा तो कैसे अपने जान को बचाने के लिए वो तड़पेगा। उसी तरह से उससे कहीं अधिक ज्यादा प्यार करते हैं भगवान से सारे द्वारिका वासी। तो जैसे ही उनको पता चला कि हमारे प्राणों से भी अधिक प्रिय गोविंद, जान से प्यारे कृष्ण द्वारिकाधीश आयंतम, आयंतम मतलब के ग्रह वो आए हैं, उनका आगमन हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले उनके पिताजी का नाम लिखा है कि जो वासुदेव हैं वो महामना, महामना मतलब मन में उनकी बहुत ज्यादा उल्लास आ गया, उनके हृदय जो है वो आनंद से प्रफुल्लित हो गया कि मेरा बच्चा आ गया, मतलब बहुत ज्यादा वासुदेव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। और उसके बाद अक्रूरश्च, अक्रूर जो भगवान के चाचा थे, जो भगवान से बहुत ज्यादा स्नेह करते थे, और उग्रसेन, उग्रसेन जो भगवान के नाना थे। उसके बाद लिखा अक्रूरश्च उग्रसेनश्च, च का मतलब होता है इसके अलावा भी, मतलब इस एज के, अभी देखो चाचा के टाइप के दूसरे भी, नाना के एज के दूसरे भी, रामश्च अद्भुत, राम यानी बलराम के अद्भुत कर्मणा, यानी कि जो बलराम की तरह बहुत ज्यादा शक्तिशाली दूसरे यदुवंशी थे वो सब। तो यहाँ पर क्योंकि अब सबका नाम तो नहीं लिख सकते इसलिए मुख्य मुख्यों का नाम लिखा है और बताए, ये सबके साथ लगेगा प्रेष्ठ मायांतम, सबको पता चल गया कि हमारे प्राणों से भी अधिक कृष्ण आ गए हैं। तो किसको पहले बड़ों का नाम लिखा और फिर छोटों का, प्रद्युमनश चारु देशांश, प्रद्युमन जो थे वो रुक्मणी और कृष्ण के पुत्र थे और उनके दूसरे भाई थे चारु देशांश, च मना दूसरी पत्नियों के दूसरे बच्चे भी, सांबो, सांब जो थे वो जामवती जो कि जामवन की बेटी थी जो त्रेता युग में श्री राम जी के साथ होते थे, उनकी पुत्री जामवंती के पुत्र सांब, वो भी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। और वो सब, इन सब ने जैसे ही निशम्य, जैसे ही सुना तो प्रहर्षो, उन्होंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया क्या, उनको जैसे ही पता चला कि भगवान आए हैं तो अत्यंत उनको बहुत ज्यादा हर्ष हुआ, हर्ष से, प्रहर्ष का मतलब होता है बहुत ज्यादा हर्ष हुआ, और वेग, वेग का मतलब है वो तेजी से आगे बढ़ने लगे, सब कुछ छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, शयन आसन भोजन, अगर सो रहे थे जो उन्होंने सोना छोड़ दिया, जो बैठे हुए थे वो उठकर खड़े हो गए, और जो भोजन खा रहे थे उन्होंने अपना भोजन छोड़ दिया। मतलब जैसे अगर देखा जाए तो सोना कितना प्रिय लगता है, हम लोग सो रहे होते हैं, कोई हमें जगाता है तो हम क्या बोलते हैं, 5 मिनट सफर करो, अभी नहीं 5 मिनट, अभी थोड़ी और भी मुझे नींद करनी है, उठने का दिल नहीं करता। कोई बैठा हुआ होगा तो अचानक से कोई बोलेगा ये कार्य करो, बोलो अभी अभी तो बैठा हूँ, तो उठेंगे नहीं। और भोजन कोई कर रहा, समझो अभी भोजन लगाया उसने, एक कौर खाया, तो फिर ये नहीं कहे उसी टाइम पर कुछ भी हो जाए वो नहीं उठेगा, बोले मैं प्रसाद तो कंप्लीट कर लूं अपना उसके बाद। लेकिन भगवान से इतना प्रेम है कि जो कोई जो कुछ भी कर रहा है वो सब छोड़ के भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान को रिसीव करने के लिए, भगवान को वेलकम करने के लिए भगवान की ओर जा रहे हैं। अनुवाद, यह सुनकर परम प्रिय कृष्ण द्वारिका धाम पहुंच रहे हैं महामना वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, अलौकिक शक्ति संपन्न प्रद्युम्न चारों देश तथा जामवती पुत्र सांब, सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। अब श्रील प्रभुपाद जी इन समस्त महामना व्यक्तियों के विषय में बहुत ही डिटेल से समझाएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो सबसे पहले नाम आया है निशम्य प्रेष्ठ मायांतम वासुदेव महामाना। तो वसुदेव जो कि भगवान श्री कृष्ण के पिताजी हैं, उनके विषय में बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी। कह रहे ये राजा शूरसेन के पुत्र हैं, देवकी के पति तथा श्री कृष्ण के पिता थे। ये कुंती के भाई तथा सुभद्रा के पिता थे। सुभद्रा अपने ममेरे भाई अर्जुन को ब्याही थी और यह प्रथा आज भी भारत के कुछ भागों में प्रचलित है। क्या प्रथा? कि मामा के बेटे के साथ विवाह होता है, वो भारत के कुछ भागों में अभी भी ये प्रथा चल रही है। ये प्रथा कहाँ से स्टार्ट हुई? सुभद्रा और अर्जुन के विवाह से। आगे श्री रूपा जी कहते हैं वासुदेव को राजा उग्रसेन का मंत्री नियुक्त किया गया था और बाद में उग्रसेन के भाई देवक की 8 कन्याओं के साथ इनका विवाह कर दिया गया था। देवकी उनमें से एक थी, कंस उनका साला था और वसुदेव ने स्वेच्छा से कंस का बंदी बनना इसीलिए स्वीकार किया था कि वे देवकी का 8वां पुत्र उसे दे देंगे, लेकिन कृष्ण की इच्छा से यह असफल रहा। पांडवों के मातुल के रूप में उन्होंने पांडवों के समस्त संस्कारों को सक्रिय भाग लिया, संस्कारों में सक्रिय भाग लिया, क्योंकि कुंती के भाई थे वसुदेव जी, तो क्योंकि अभी ननिहाल के उसमें मामा हुए ना पांडवों के, तो उनके सारे संस्कार उन्होंने करवाए। उन्होंने शतश्रृंग पर्वत पर कश्यप पुरोहित को बुलाया और सारे कृत्य कराए। जब कृष्ण कंस के बंदी गृह के भीतर प्रकट हुए तो वसुदेव ने उन्हें श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर गोकुल पहुंचाया। वसुदेव के अंतर्ध्यान होने के पूर्व कृष्ण बलदेव सहित अंतर्ध्यान हो गए और अर्जुन यानी वसुदेव के बांझे ने उनका दाह संस्कार किया। तो यहाँ पर वसुदेव जो कि भगवान के पिता हैं उनके विषय में बताया है और उसके बाद अक्रूर उनके विषय में बता रहे हैं। ये वृष्णि कुल के सेनापति तथा श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने एकमात्र स्तुति की एकाकी विधि द्वारा भगवत भक्ति में सफलता प्राप्त की। भगवान की स्तुति इतनी सुंदर की कि उसी स्तुति के द्वारा उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त हुई। वे आहु की पुत्री सूतनी के पति थे। जब अर्जुन श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार सुभद्रा का सफलतापूर्वक अपहरण करके गए तो उन्होंने अर्जुन की सहायता की थी। सुभद्रा का सफलतापूर्वक अपहरण करने के बाद कृष्ण तथा अक्रूर दोनों ही उसे देखने गए और अर्जुन को दहेज दिया। अर्जुन का ब्याह हुआ था सुभद्रा के साथ और ये योजना थी भगवान की कि अर्जुन सुभद्रा का अपहरण कर रहा था। सुभद्रा का अपहरण इस तरह किया कि रथ जो है वो सुभद्रा चला रही थी, तो आगे चले गए, इस तरह से अपहरण हो गया भगवान की योजना से। फिर अक्रूर के साथ भगवान उनको दहेज देने के लिए गए थे। जब सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु महाराज परीक्षित की
माता उत्तरा के साथ ब्याहया गया तो भी अक्रूर उपस्थित थे। अक्रूर के श्वसुर अहुक की उनसे नहीं बनती थी, किंतु दोनों ही भगवत भक्त थे। कौन? जो अहुक, अहुक राजा उग्रसेन का नाम है और वो उनके ससुर हैं, और उन दोनों की आपस में नहीं बनती थी, लेकिन उग्रसेन और अक्रूर जी दोनों ही भगवान के भक्त हैं। अब उग्रसेन के विषय में बता रहे हैं। उग्रसेन ये वैष्णव कुल के सर्वाधिक पराक्रमी राजाओं में से थे और महाराज कुंती भोज के चचेरे भाई थे। इनका दूसरा नाम अहुक था। वसुदेव इनका मंत्री था और इनका पुत्र कंस अत्यंत ही शक्तिशाली था। इस कंस ने अपने पिता को बंदी बनाया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। भगवान कृष्ण तथा उनके भाई भगवान बलराम की कृपा से कंस मारा गया और उग्रसेन पुनः राज सिंहासन पर बैठाए गए। जब शालव ने द्वारिकापुरी पर आक्रमण कर दिया था तो उग्रसेन वीरता से लड़े और उन्होंने शत्रु को पीछे हटा दिया। उग्रसेन ने नारद जी से भगवान श्री कृष्ण की अलौकिकता के विषय में जिज्ञासा की थी। जब यदुवंश का विनाश होना था तो उग्रसेन को सांब के गर्भ से उत्पन्न लोह पिंड की देखरेख का काम सौंपा गया था। तब उन्होंने लोह पिंड को खंड खंड करके द्वारिका के समुद्र तट पर समुद्र जल में मिला दिया था। तत्पश्चात उन्होंने द्वारिकापुरी के भीतर तथा राज्य में मध्यपान की पूर्ण मनाही कर दी थी। मृत्यु के पश्चात उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो ये सब कथाएं जो हैं वो हम दसवें सिकंद में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से सांब को श्राप मिला था कि आपके पेट पे जो लोहे का पिंड है उसी से ही सारे यदुवंश का नाश होगा। और ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उस जो लोहे का पिंड प्राप्त हुआ था उसकी देखरेख उग्रसेन को मिली थी और उन्होंने उसको चूरा बनाकर समुद्र में फेंक दिया था, और जिसके कारण जो घास उगी थी उसी से यदुकुल का नाश हुआ था। और यहाँ पर बताया कि उन्होंने द्वारिकापुरी में मध्यपान से बिल्कुल मनाही कर दी थी और लास्ट में जब मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। अब तीसरे व्यक्ति जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उग्र, यहाँ पर क्या है, वसुदेवो महाअक्रूरश्च चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रम। राम, ये राम जो है वो बलदेव भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई का नाम है। उसके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, बलदेव ये वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए अलौकिक पुत्र थे। उन्होंने उनको रोहिणी नंदन भी कहा जाता है। जब वसुदेव ने कंस से पारस्परिक समझौता करके कारावास स्वीकार कर लिया था तो रोहिणी को बलराम समेत नंद महाराज को सौंप दिया गया था। अतएव नंद महाराज बलदेव तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों के पोषक पिता थे। अतएव नंद महाराज भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों के पोषक पिता थे। सोतेले भाई होते हुए भी कृष्ण तथा बलराम बचपन से ही निरंतर एक साथ रहे। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वांश हैं, अतएव वे कृष्ण के ही समान उत्तम तथा शक्तिमान हैं। उनका संबंध विष्णु तत्व से है। वे कृष्ण के साथ द्रौपदी स्वयंवर में गए थे। जब श्री कृष्ण की सुनियोजित चाल से अर्जुन द्वारा सुभद्रा का अपहरण हुआ था तो बलदेव अर्जुन पर अत्यधिक क्रोधित हुए थे और उन्होंने तत्काल मार डालना चाहते थे उन्हें, अर्जुन को, मतलब क्योंकि अभी देखो अर्जुन सुभद्रा को हरण करके गया था तो बलराम और कृष्ण क्षत्रिय थे, तो जाहिर सी बात है किसी क्षत्रिय की बहन का अपहरण होगा तो उसका भाई तो जाहिर सी बात है क्रोधित होगा ना। तो उसने सोचा मैं अर्जुन को अभी मार डालूंगा। बहुत ज्यादा क्रोधित हुए थे, उसी टाइम पर अर्जुन को मार डालना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र के लिए बलदेव के चरणों पर गिर पड़े और इतना क्रुद्ध न होने की विनती की। और उन्होंने बोला, भैया आप इतना ज्यादा क्रोधित क्यों हो रहे हो? अपहरण तो वो करता है जो कि रथ चला रहा है। रथ तो सुभद्रा चला रही थी, अब किसको मारोगे जाके? सुभद्रा को मारोगे क्या? अर्जुन तो पीछे बैठा था, उसने बल्कि सुभद्रा का हरण नहीं किया, बल्कि सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है। तब कहीं बलदेव प्रसन्न हुए थे, इसी प्रकार वे कौरवों से भी क्रुद्ध हुए थे और वे उनकी सारी नगरी को यमुना नदी में फेंक देना चाहते थे, लेकिन कौरवों ने उनके चरण कमलों में शरण लेकर उन्हें प्रसन्न किया था। वे वास्तव में कृष्ण के जन्म के पूर्व देवकी के संतानों में देवकी के सातवें पुत्र थे, लेकिन कंस के क्रोध से बचने के लिए रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिए गए थे, अतएव उनका अन्य नाम संकर्षण है, जो बलदेव के स्वांश भी है। अतएव उनका अन्य नाम संकर्षण है जो श्री बलदेव के स्वांश है, क्योंकि वे श्री कृष्ण ही समान शक्तिशाली हैं और भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले हैं, अतएव वे बलदेव कहलाते हैं। वेदों में भी आदेश है कि बिना बलदेव की कृपा के कोई भी परमेश्वर को नहीं जान सकता। बल का अर्थ भौतिक शक्ति नहीं, अपितु आध्यात्मिक शक्ति है। कतिपय अल्पज्ञ बल को शारीरिक बल मानते हैं, लेकिन शारीरिक बल से किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। शारीरिक शक्ति का अंत भौतिक शरीर के ही साथ हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक बल जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ साथ जाता है। अतएव बलदेव द्वारा प्राप्त किया गया बल कभी व्यर्थ नहीं जाता, यह बल शाश्वत होता है और बलदेव समस्त भक्तों के आदि गुरु हैं। तो यहाँ पर बलदेव के द्वारा जो हमें बल प्राप्त होता है, बलराम जी को प्रणाम करने से, बलराम जी के शरण में आने से, वो आध्यात्मिक बल होता है जिसके द्वारा हम आत्म साक्षात करके कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ईश्वर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वास्तव में बलदेव जी ही आदि गुरु हैं, क्योंकि गुरु का काम क्या होता है? शिष्य को भगवान तक पहुंचाना। और यहाँ पर बताया गया कि शास्त्र कहता है जिस पर बलदेव की कृपा नहीं होती है वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री बलदेव संदीपनी मुनि के शिष्य के रूप में कृष्ण के सहपाठी थे। उन्होंने बचपन में कृष्ण के साथ मिलकर अनेक असुरों को मारा था, विशेषतया तालवन में धेनु का असुर का वध किया था और कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे निरपेक्ष बने रहे और भरसक प्रयत्न करते रहे कि युद्ध ना हो। वे दुर्योधन के पक्षपाती थे तो भी वे निरपेक्ष बने रहे। जब दुर्योधन तथा भीमसेन के मध्य गदा युद्ध हुआ था तो भी वे वहां उपस्थित थे। जब भीमसेन ने दुर्योधन की जांघ पर या कमर के नीचे प्रहार किया था तो वे उससे अप्रसन्न हुए थे और इस अनुचित कार्य का बदला लेना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने भीम को उनके क्रोध से बचाया। भीमसेन से अरुचि उत्पन्न होने से उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया था और उनके जाते ही दुर्योधन भूमि पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया था। अब उस समय क्या हुआ था, दुर्योधन और भीमसेन का युद्ध हो रहा था तो दुर्योधन के पूरे शरीर को गांधारी ने वज्र का बना दिया था सिवाय जांघों के, यानी कमर के नीचे का जो हिस्सा, और गदा युद्ध का ये रूल होता है कि कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता। जब तक वहां पर प्रहार नहीं होता तब तो दुर्योधन मरता नहीं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें संकेत किया कि देखो मंजले भैया इधर मारो, तुमने प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं उसकी जंगा को तोड़ूंगा, तो क्या इसके मृतक शरीर की जब ये शव बन जाएगा तब उसकी जंगा तोड़ोगे? अभी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। भीम जानता था कि गदा युद्ध में जंगा बर्बाद नहीं किया जाता, लेकिन भीम अब कृष्ण कह रहे थे तो उन्होंने ऐसे मारा, और जब मारा तो बलदेव बहुत ज्यादा क्रोधित हुए थे। बोला ये कोई तरीका है, ऐसे करना होता है, ये तो गदा युद्ध के रूल के खिलाफ है। तब भी है ना भगवान श्री कृष्ण ने कहा
आप पहले तो चले गए थे यात्रा करने के लिए और आज आप आयो। इन्होंने जो कौरव हैं उन्होंने इतने सारे रूल्स को तोड़ा, वो तब तुम्हें आप नहीं थे और आज जब भीम ने ये रूल को तोड़ा है तब आप बोल रहे हो।
वास्तव में भीम ने अपने इस युद्ध के गदा युद्ध के नियम को नहीं तोड़ा है बल्कि अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और एक क्षत्रिय को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का पूरा अधिकार है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें चुप करा दिया था, लेकिन फिर भी बलदेव वहां से चले गए थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा रुष्ट हो गए थे और उनके जाते ही दुर्योधन की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का मृतक संस्कार किया क्योंकि वे उसके मामा थे। उस समय सारे पांडव इतने शोक संतप्त थे कि यह संस्कार करना उनके वश की बात नहीं थी। अंत में वे इस संसार से विदा होते समय अपने मुख से एक महान श्वेत सर्प उत्पन्न करते गए और शेष नाग द्वारा एक नाग के रूप में ले जाए गए, यानी कि क्योंकि वो शेषनाग के अवतार थे तो अंत में शेषनाग ही आकर उनको लेके गए। आगे प्रद्युम्न के विषय में बता रहे हैं कि ये कामदेव के अथवा अन्यों के अनुसार सनत कुमार के अवतार थे और श्री कृष्ण तथा द्वारिका में महारानी लक्ष्मी देवी श्रीमती रुक्मणी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा के साथ विवाह करने पर बधाई दी थी। वे उन प्रधान सेनापतियों में से थे जिन्होंने शाल्व से युद्ध किया था और युद्ध भूमि में उससे लड़ते लड़ते मूर्छित हो गए थे। उनका सारथी उन्हें युद्ध भूमि से शिवर में लेके गया था किंतु उन्होंने इस कार्य के लिए उसे कोसा था तथा स्वयं अत्यंत ही खिन्न थे। उन्होंने पुनः शाल्व से युद्ध किया था और विजयी हुए थे। उन्होंने नारद जी से विभिन्न देवताओं के विषय में सुना था। वे भगवान श्री कृष्ण के चार पुराणों में तीसरे हैं। प्रद्युम्न वासुदेव, प्रद्युम्न शंकरषण वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये तीसरे हैं। उन्होंने अपने पिता कृष्ण से ब्राह्मणों की महिमा के विषय में जिज्ञासा की थी। यदुवंशियों के बंधुघाती युद्ध में वे ऋषियों के राजा भोज के हाथों मारे गए। मृत्यु के बाद उन्हें अपने मूल पद पर स्थापित किया गया। तो ये प्रद्युम्न जो कि कामदेव के अवतार थे या फिर कुछ लोग कहते हैं सनत कुमार के अवतार थे, रुक्मणी जी और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे, उनके पराक्रम के विषय में हमने पढ़ा। और उसके बाद चारुदेश्वर, ये भी श्री कृष्ण तथा रुक्मणी देवी के पुत्र थे। ये भी द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित थे। ये अपने भाइयों तथा पिता की भांति महान योद्धा थे। उन्होंने विविनिक धक से युद्ध करके उसे मार डाला था। तो ये भी प्रद्युम्न के भाई थे। और उसके बाद सांब जो कि जामंती जी के पुत्र थे, ये यदुकुल के महान शूरवीरों में से थे। ये श्री कृष्ण की पत्नी जामवती से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी और महाराज युधिष्ठिर की संसद के सदस्य बने थे। ये महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित थे। जब प्रभास यज्ञ में सारे ऋषि एकत्रित हुए थे तो सात्यकी ने बलदेव से इनके गुण का गान किया था। ये युधिष्ठिर द्वारा संपन्न अश्वमेध यज्ञ के समय अपने पिता श्री कृष्ण के साथ उपस्थित थे। इनके भाइयों ने इन्हें गर्भवती स्त्री के रूप में कुछ ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया था और उन्होंने हंसी में उनसे पूछा कि मेरे गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। इस पर ऋषियों ने कहा था कि तुम्हारे गर्भ से लोहे का पिंड यानी मूसल उत्पन्न होगा जिससे यदुकुल में बंधुघाती युद्ध होगा। दूसरे ही दिन प्रातःकाल सांब के गर्भ से एक बृहद लोहे पिंड यानी मूसल उत्पन्न हुआ जिससे उग्रसेन को उचित कार्यवाही के लिए सौंपा गया था। बाद में सचमुच ही पूर्व घोषित बंधुघाती युद्ध हुआ, जिसमें सांब भी मारे गए थे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण के ये पुत्र अपना अपना स्थान त्याग कर तथा लेटना बैठना खाना जैसे कृत्यों में विरत होकर अपने पूज्य पिता की ओर दौड़े। तो ये सब महान महान व्यक्ति जिनको भगवान श्री कृष्ण की संतान बनने का अथवा पिता बनने का नाना बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये तो भगवान की लीला में सहायता करने के लिए इस संसार में आए हैं। तो सौभाग्य है हमारा कि इनके विषय में हम श्री प्रभुपाद जी के द्वारा सुन रहे हैं। अब आगे बता रहे हैं कि वो सब किस तरह से भगवान का स्वागत करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, अत्यंत ही सुंदर भाव प्रकट कर रहे हैं। सुत गोस्वामी कहते हैं, वाररेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणे ससुमंगलै शंखतूर्य निनादेन ब्रह्मघोषेण चादृता प्रत्युज्जग्मु रथे हृष्टा प्रणया गत साध्वसा वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणै ससुमंगलै शंखतूर्य निनादेन ब्रह्मघोषेण चादृता प्रत्युज्जग्मु रथै हृष्टा प्रणया गत साध्वसा। शब्दार्थ वारणेन्द्रम का मतलब है ये जो हाथियों का एक टाइप का हाथी होता है जो कि मंगलिक होता है, यानी उसको जो राजा लोग होते हैं एक हाथी रखते हैं, तो जो भी कोई मंगल वाला कार्य करना होता है ना, उनको सुमंगल बहुत ज्यादा स्वस्ति वाला कार्य करना होता है उसमें उसको लेकर आते हैं, सबसे पहले हाथी निकलता है एक। तो ऐसे मांगलिक कार्य वाले हाथी को पुरस्कृत्य मतलब आगे, उनको ऐसा हाथी आगे जा रहा है, और ब्राह्मण उसके बाद जो ब्राह्मण है ब्राह्मणों के द्वारा ससुमंगल है, यानी समस्त शुभ लक्षणों सहित जो सारी शुभ लक्षणों वाली वस्तुएं हैं वो सब ब्राह्मण लोग अपने हाथ में लेके जा रहे हैं, जैसे नारियल है, चावल है, फूल है और सुगंधित वस्तुएं, वो सब भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए ब्राह्मण ये सारी चीजें लेकर चल रहे हैं। शंख तूर्य निनादेना, और साथ में शंख बज रहे हैं, तुरही बज रही है और अलग अलग ध्वनियां हो रही हैं, किसकी? ब्रह्म घोषेण चादृता। ब्रह्म घोषण मतलब कि वहां पर साउंड इतना तेज है, और ब्रह्म घोषण मतलब वेदों के अस्तुत्रों का ब्राह्मण उच्चारण कर रहे हैं। वस्तु न इंद्र बृहस्पदा, मतलब जोर जोर से ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। वेद मंत्रों से जो साउंड निकलता है, जो ध्वनि निकलती है, वो कोई साधारण नहीं होती है, वो वास्तव में स्पिरिचुअल साउंड होता है। जैसे आजकल क्या करते हैं, किसी को स्वागत करने जाते हैं तो बस ऐसे जोर जोर से ड्रम बजा देते हैं और डांसिंग कर, ऐसा नहीं। वास्तव में स्वागत भगवान का यहाँ पर किया जा रहा है वेद मंत्रों के उच्चारण से, और जितने भी वेद हैं उनके अंदर जितने भी मंत्र हैं उन समस्त मंत्रों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मंत्र है वो है महामंत्र, इसीलिए उसका महामंत्र नाम है, है ना। बाकी सबको मंत्र कहा जाता है, इसे महामंत्र कहा जाता है। इसलिए कोई भी अगर शुभ कार्य करना हो, कुछ भी, अगर कोई घर पे आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी को वेलकम करना है, किसी को विदा करना है, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि उसे ब्रह्म घोषण, उसका अगर मंगल चाहते हो तो क्या कहो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उससे कहने वाले का भी, सुनने वाले का भी, जाने वाला का, आने वाले का, सब सबका मंगल होगा। तो यहाँ पर ब्राह्मण जो है वो वेद मंत्रों से चादृता अर्थात भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, और प्रणयागत मतलब स्नेह से सिक्त, यानी बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन रह गई है,
प्रत्युज जगमु रथे रिष्टा, प्रत्युज जगमु यानी भगवान का स्वागत करने के लिए रथे रिष्टा रथ पर स्थित होकर बहुत ज्यादा रिष्टा मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर रथ पे सब सवार हैं, ये सारे जो जिनका नाम लिया गया। अब रथ पे क्यों सवार हैं? क्योंकि द्वारिका नगरी बहुत बड़ी है, अभी तो भगवान ने केवल जो पहला जो गेट है ना बड़ा वाला उसको प्रवेश किया है, तो वहां से द्वारिका भगवान का जो महल है वहां से लेकर गेट तक पहुंचने के लिए भी वो लोग रथ पर बैठे हैं और भगवान का स्वागत करने के लिए इतने ज्यादा हर्षित हैं। हर्षिता का मतलब है बहुत ज्यादा हर्षित हैं और आगे कह रहे हैं प्रणयागत स्नेह से सिक्त, बहुत ज्यादा उनके हृदय में स्नेह है भगवान के लिए, साधवा साधवसा और सादर स्नेह के साथ उनको घबराहट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा अभी अचानक से भगवान आ गए हैं तो पता नहीं उनको लग रहा है क्या करें क्या करें, कौन सी सामग्री उठाएं, कैसे भगवान का स्वागत करें, ये उठाना है वो उठाना है, ऐसे ऐसे करके घबराहट में रथों पर चढ़ रहे हैं और उनका एक ही उद्देश्य है जल्दी से जल्दी भगवान के पास जाएं और उनका दर्शन करें और उनका स्वागत करें। अनुवाद, वे फूल लिए ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े, उनके आगे आगे सौभाग्य सूचक हाथी थे, शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक स्तोत्र उच्चरित हो रहे थे, इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त अभिवादन किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की इच्छा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं किसी महापुरुष के स्वागत की वैदिक विधि से सम्मान का वातावरण उत्पन्न होता है जो आगंतुक के लिए स्नेह तथा सत्कार से पूर्ण होता है, यानी जो आता है अगर हम उसका विधि पूर्वक करते हैं स्वागत तो फिर उसका उसको स्नेह का सूचक होता है और ऐसे स्वागत का शुभ वातावरण उपयुक्त साज सामग्री पर निर्भर करता है। कौन सी सामग्री? जो ब्राह्मण जो मांगलिक वस्तुएं लेकर आए हैं, वेदों का उच्चारण हो रहा है तो ये सब, और पहले जो बताया गया था धूप दीप फल शंख चक्र शंख नारियल इत्यादि जिसमें, और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसे स्वागत का शुभ वातावरण उपयुक्त साज सामग्री पर निर्भर है जिसमें शंख पुष्प धूप सजे हुए हाथी तथा वैदिक साहित्य से स्तोत्रों का पाठ करने योग्य ब्राह्मण सम्मिलित हैं। स्वागत का ऐसा कार्यक्रम स्वागतकर्ता तथा स्वागत किए जाने वाले दोनों की निष्ठा से पूरित हो रहा है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए हाथी घोड़े रथ ब्राह्मण और वेदों का मंत्र सब उच्चारण हो रहा है। अब कल हम उससे आगे पढ़ेंगे कि भगवान किस प्रकार अपने घर द्वारिका में अपने महल में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर उनकी रानियाँ किस तरह से भगवान का स्वागत कर रही हैं। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूँ। हरे कृष्ण।